તારીખ 12/3/1998 શ્રી સમયસર શ્લોક 11, 12 અને 13 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 298
12માં લોક હૈ યહાં શુદ્ધ મેં કો મુખ્ય કરકે કલશ રૂપ કાવ્ય કહેતે હૈ ઇન્દ્રા જી મેં પેજ નંબર 42 ભૂતમ ભાંતમ ભૂતમ વેવ रवसा निर्भिद्य बंधक सुधि यद्यंत किल कोप यहो कलयते व्याहत्य मोहम हठा आत्मा आत्मानुभव एक गम्य महिमा यत्वयम मास्ते ध्रुवम नित्यम कर्म कलंक पंख विकलो देव स्वयं शाश्वत श्लोकार्थ जगत के प्राणी जगत के सभी प्राणी यह सम्यक स्वभाव का अनुभव करें कि जहां यह बद्ध स्पष्ट आदि भाव स्पष्ट रूप से इस स्वभाव के ऊपर ऊपर तीरते हैं तो भी उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते। एक भावना भाई है जगत के सभी प्राणी के प्रति, जगत के सभी जीव है उसमें अनंत अभव्य भी है और अनंत भव्य भी है, और भव्य में भी अनंत ऐसे हैं कि जो अभव्य जैसे ही है। ये बात वस्तु स्थिति की है, सैद्धांतिक बात है। आचार्य महाराज की भावना इस सिद्धांत को ओवरटेक करती है, उल्लंघन करती है। वह कहते हैं भावना में भव्य अभव्य कुछ नहीं देखा जाता, भावना इतनी बलवान होती है और विशाल भी होती है। यहाँ पर अमृतचंद्र आचार्य महाराज की भावना है, तीर्थंकरों की भी ऐसी ही भावना होती है कि जगत के सभी जीव इस सन्मार्ग को प्राप्त करो, जो सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। जबकि ये शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है, फिर भी ज्ञानी को, मुनि को, मोक्षमार्गी धर्मात्मा को ऐसा ही भाव आता है। जैसा भाव अपने आत्मा के लिए आता है वैसा भाव सभी आत्माओं के लिए आता है। कि किसी को भी किंचित मात्र दुख न हो और सभी जीव सुखी हो जाए, कैसा करके कि अपने सम्यक स्वभाव का अनुभव करके। स्वभाव को एक विशेषण यहाँ दिया है, सम्यक स्वभाव। आत्मस्वरूप जो स्वभाव रूप है वो समीचीन रूप है, सम्यक रूप है। आत्माभिमुख, आत्माभिमुखता ये स्वभाव की चीज है, ये स्वभावगत बात है। पर सन्मुख होना वो स्वभाव के विरुद्ध भाव है, ये स्वभाव विरुद्ध है।
आत्म स्वभाव ऐसा नहीं है। तो सभी जीव स्वाभिमुख होकर के अपने स्वाभिमुख होने वाला जो स्वभाव, इसमें स्वाभिमुख होने का ही स्वभाव है, इसका ही अनुभव करो कि जिस स्वभाव में ये कर्म से बद्ध स्पष्ट, कर्म से संबंध रखने वाले, निमित्त नैमित्तिक संबंध रखने वाले वैभाविक भाव हैं, वो स्पष्ट रूप से स्वभाव के ऊपर तिरते हैं, फिर भी उसमें प्रवेश नहीं पाते हैं। उसमें आचार्य महाराज ने एक अनुभवपूर्ण बात कही है कि हम हमारे स्वभाव का जब अनुभव करते हैं और हमारे स्वभाव के अनुभव में ही हमेशा निरंतर रहते हैं, तो हमारे जो विभावित परिणाम हैं वो हमको स्वभाव के ऊपर चीरते हुए दिखते हैं। कैसा दिखते हैं? चीरते हुए दिखते हैं, और हमारे स्वभाव में उसका प्रवेश नहीं दिखा जाता है, अनुभव नहीं किया जाता है। जैसे पानी की बाल्टी हो, कुछ दो पांच तेल की बूंदें डाली जाए, क्या होगा कि तेल ऊपर तिरेगा। इसका ग्रेविटी के कारण से पानी भारी होता है, तेल हल्का होता है, तो साइंटिफिक बात है। कि थोड़ा तेल है इसलिए ऊपर तिरता है, ऐसी बात नहीं। तेल का पीपा हो, बड़ा बैरल हो, 200 किलो तेल भरा हुआ हो, उसमें 5 किलो पानी डाल दो, पानी नीचे जाएगा, तेल ऊपर रहेगा। कोई सैंपल निकालेगा तो तेल हाथ में आएगा, पानी नहीं आएगा, क्योंकि पानी तो नीचे बॉटम में रहता है, भारी है ना। हमारे को तेल का बिजनेस था ना, तो ऐसा ऐसा कभी कभी हुआ है, तेल के साथ पानी भी आ गया हो, तो हमारा जो आदमी लोग डिलीवरी लेने को जा रहा था, एक पाइप लेके जाता था तो बॉटम तक पहुंचता है, बॉटम में पाइप डाले, सब करे मुंह से, पानी हो तो पानी आ जाए इसमें, वो तल में बस। तो माल का डिलीवरी ले लिया, पैसा दे दिया, फिर कौन जवाब देगा? इस तरह से चेक होता है। मतलब क्या है कि यहां भी एक ऐसा साइंस है, विज्ञान है, कि विभाव है वो हल्का है, विभाव है वो हल्का है, वो स्वभाव के ऊपर तिरता है। हमारा स्वभाव वजनदार है, वेट इसका ज्यादा है, जबकि वजनपना वो पुद्गल का यहां बात नहीं लेना है, शक्ति ताकत घनिष्ठपना स्वभाव में बहुत है, ये मर्यादित असीम ताकत है, उसमें बेहद ताकत है, और विभाव तो मर्यादित है, तेल की बूंद जैसा है पानी के बाल्टी में, पानी का दल पानी के बाल्टी में पूरा है, उनको थोड़ी बूंदे ही दिखने में आती है, वैसे स्वभाव दल चैतन्य दल आत्मा ऊपर ऊपर छींटे की तरह विभाव तिरते हुए हमें दिखते हैं, जब हम हमारे स्वभाव का अनुभव करते हैं तब। ये एक अनुभवपूर्ण बात किया है, जिसको भी स्वभाव का अनुभव होता है उनको वैसा ही दिखता है। इतनी छोटी और हल्की चीज है विभाव परिणाम, देखो उसने हमारे पूरे स्वाभाविक आत्मा को दबा दिया है, कितना बड़ा विपर्यास चल रहा है। बड़ा प्राणी छोटे को खा जाए संसार में तो, लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि छोटा प्राणी बड़ा को खा गया है। हाँ, ऐसी बात बन गई है ये तो, कि विभाव तो है मर्यादित, उसमें कोई उतनी ताकत भी नहीं, कोई उतनी ताकत नहीं है विभाव में, एक सेकंड में पलटा खा जाता है, इसकी आयु भी एक समय की है और पलटा खा जाता है। राग में से द्वेष, द्वेष में से राग, राग में से वितरागता, स्वभाव तो बहुत ताकत वाला है, फिर भी मिथ्यात्व अवस्था में, ज्ञान अवस्था में पूरी आत्मा, महान आत्मा दब गई है, इतना बड़ा भी प्रयास चलता है संसार अवस्था में। आचार्य श्री कहते हैं कि ये तो ऊपर ऊपर तिरता हुआ हमें दिखता है, तो भी हमारे स्वरूप में उसका प्रवेश नहीं, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई स्थापना नहीं, उसकी कोई जगह ही नहीं, कोई अवकाश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है, और ये भाव तो अनित्य है और अनेक रूप है। हमारा स्वभाव तो नित्य है, शाश्वत है, ये तो क्षणिक है, टकलादी चीज है, टकलादी कहते ना, जो टूट जाती है, फूट जाती है, वो कमजोर होती है, वो तो अनित्य है। हमारा स्वभाव तो नित्य है, वो अनेक रूप है, ये एक रूप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनेक रूप है, पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश करते ऐसे जो अनेक रूप है, वह पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश करते नहीं है, ऊपर ही रहते हैं। जैसे तेल की बूंद ऊपर रहती है, वैसे वो ऊपर ऊपर रहते हैं। यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्था में प्रकाशमान है, ऐसा नहीं कहा कि अवस्था में द्रव्य स्वभाव है ही नहीं। समन्तात् द्योतमानम् उसका अर्थ किया है कि यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्था में प्रकाशमान है। तो सर्व अवस्था में तो कोई अवस्था बाकी नहीं रही, संसार में तो विभाविक अवस्था है, उसमें द्रव्य स्वभाव कैसा है, कैसा है, कैसा आया? कहते हैं कि ये द्रव्य स्वभाव है तो केवल नित्य रूप होता तो अवस्था में नहीं आता, लेकिन सभी अवस्था में आता है, और अवस्था रूप होता तो अनित्य हो जाता, तो अवस्था का नाश के साथ उसका भी नाश हो जाता। इसलिए न केवल नित्य है, न केवल अनित्य है, अनुभव स्वरूप है। कैसा है? अनुभव स्वरूप है। ये चर्चा पंचाध्यायी के उत्तरार्ध में 561 गाथा में ग्रंथकार ने की है। कुछ साल पहले ये अलवर वाले अजीत भाई भी यही गाथा लेके हमारे पास आए थे, शायद आपके आए थे। आगरा में, आगरा के शिविर में आए थे। आगरा के शिविर में लक्षण लक्षण की चर्चा चल रही थी शिविर में, और लक्षण पर्याय में होता है, ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभाव पाया जाता है, ज्ञान लक्षण में ज्ञान स्वभाव पाया जाता है, और लक्षण लक्षण द्रव्य रूप से अभेद है, ऐसा बात किया है वहाँ आचार्य ने। क्या किया कि द्रव्य रूप से दोनों अभेद हैं, हम तो पर्याय को वहाँ द्रव्य स्वभाव के रूप में देखते हैं वहाँ, और है भी समय साल में कई जगह वो बात आई है, आगे भी 15 गाथा में भी वो बात करेंगे, क्योंकि सामान्य का आविर्भाव से स्वभाव का आविर्भाव कराना है वहाँ, ये विधि है।
तो जो कल्पना से द्रवगुण पर्याय का ख्याल करता है, समझ करता है, वो द्रवगुण पर्याय का टुकड़ा कर देता है, द्रव्य अलग पर्याय अलग, एक नित्य है एक अनित्य है, पर्याय ऊपर ऊपर घूमती है और द्रव्य वैसा का वैसा पड़ा रहता है, जैसे घंटी के ऊपर का पत्थर घूमता है नीचे वाला वैसा का वैसा रहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहां भी ऐसा कहा कि शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्था में प्रकाशमान है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो प्राप्त नहीं हो सकता, उसका पता नहीं लगता, क्योंकि वो तो अव्यक्त है, द्रव गुण तो अव्यक्त है और द्रव्य भी एक भेद है, गुण भी एक भेद है, पर्याय भी एक भेद है और तीनों होकर के वस्तु का स्वरूप है, और वस्तु का स्वरूप अभेद है, वस्तु का स्वरूप अभेद है। तो कहते हैं कि जो स्वभाव है वो द्रव्य का भेद रूप भी नहीं, गुण का भी भेद रूप नहीं और पर्याय का भेद रूप भी नहीं, फिर भी तीनों में अभेद रूप से है, समंतात जैसे दूरी है माला के सब पारों में होती है, माला के पारे होते हैं, दूरी हर जगह होते हैं, ऐसे स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय तीनों में है, लेकिन तीनों में से एक भी भेद रूप नहीं है। और ये चर्चा और भी बहुत विस्तार से चली थी, अपने शिविर कहाँ थे, दिल्ली के पास तिजारा में, तिजारा के शिविर में बहुत चली थी, माए थे, विद्वत लोग भी वहां काफी थे, तो पंचाध्यायी में से तो निकला, विद्वत लोग तो शास्त्र पढ़ते हैं, समयसार में कहाँ है, समयसार में कई जगह है, ये बहुत जगह है, पंद्रह की गाथा में भी कहेंगे ये बात, और आगे सबसे ज्यादा कहा है तो 26 कलश इसी विषय पे कहा है, 142 गाथा के बाद एक साथ 26 कलश किया है, न नित्य है न अनित्य है, न भेद रूप है न भेद रूप है, न शुद्ध है न अशुद्ध है, एक है न अनेक है, कहने का मतलब क्या है, ऐसा कहने का मतलब क्या है कि जैसा है वैसा है और वो सभी अवस्थाओं में द्रव गुण में तो है ही, सभी अवस्था में भी प्रकाशमान है, उसको कहते हैं अनुभय स्वरूप। जब द्रवगुण पर्याय तीनों में है तो कहीं ऐसा भी प्रश्न उठता है कि फिर उसको उभय स्वरूप का क्यों नहीं कहते, जब द्रवगुण में भी है और पर्याय में भी है तो उसको उभय स्वरूप कह दो, अनुभय स्वरूप क्यों कहते हो, ये भी प्रश्न उठता है और तर्क तो उठ सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो कहते हैं कि जो उभय स्वरूप है वो तो प्रमाण का विषय है, द्रव्य पर्याय उभय स्वरूप वो तो प्रमाण का विषय है, और ये शुद्ध नहीं का विषय चलता है, इधर ये 14वीं गाथा में क्या चलता है, शुद्ध नहीं का विषय चलता है, ये तो निश्चय नहीं का विषय है, तो वस्तु का निश्चय स्वरूप है, ये याद करते ही आगे आपका ये बहुत साल पहले का विषय चल रहा है, अनुभव का चल रहा है, बारहवें कक्ष में वही आया, हम तो क्रम से पढ़ते हैं, समय सार कुछ टाइम से चालू किया है स्वाध्याय में, तो हम बारहवां कलश में आए थे, तो हमने कोई शिरक शंका सवाल नहीं लाया, चलो भाई जहां से अपना स्वाध्याय चालू है वहां से कंटिन्यू करें। तो कलश में एक शब्द है कि जो आत्म स्वभाव है वो समंतात द्योतमानम, ऐसा शब्द पड़ा है, क्या समंतात द्योतमानम, तो उसका अनुवाद किया है कि ये शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है, अवस्था तो अनित्य है, अनित्य में कैसे स्वभाव आया? स्वभाव तो त्रिकाली है, तो त्रिकाली की ऐसी कल्पना नहीं करनी है। वो तो त्रिकाली होते ही भी सर्व अवस्था में है, क्योंकि अवस्था भी त्रिकाल होती है। द्रव्य को अवस्था कभी नहीं होती, एक समय तो बता दीजिए, एक समय भी अवस्था नहीं है, तो फिर उसका ऐसा रहना में क्या आपत्ति है? सभी अवस्था में रहना क्या आपत्ति है? ये बात नहीं कि अवस्था रूप है, वो बात नहीं है कि अवस्था रूप है। अवस्था रूप होता तब तो आपत्ति आती कि अवस्था का व्यय होने से स्वरूप का भी व्यय हो जाता, लेकिन अवस्था पलटती है, स्वभाव सभी में रहता है, सभी अवस्था में ऐसा का वैसा ही रहता है, इसलिए वो अनुभव स्वरूप है। जैसे अवस्था में अवस्था रूप नहीं है, वैसे द्रव्य गुण में द्रव्य गुण के भेद रूप भी कहाँ है? अगर ऐसे भेद रूप होता तो विशेष हो जाता, ये तो सामान्य स्वभाव की बात चल रही है, सामान्य है, इसलिए अनुभव स्वरूप है। ऐसा शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर के जगत अनुभव करे, अवगत मोहि भूय। क्यों? कि मोह सहित होकर के इसका अनुभव संभव नहीं है। मोह है वो स्वयं स्वरूप की भ्रांत दशा है, स्वस्वरूप की भ्रांत दशा को मोह कहते हैं। जैसे मैं मनुष्य तो कहते नहीं, ये भ्रांति है, आत्मा मनुष्य नहीं है, आत्मा आत्मा ही है, मैं पुरुष मैं स्त्री तो कहते नहीं, आत्मा आत्मा है, ये मोह है। कर्मजनित अवस्था को अपना स्वरूप रूप अनुभव करना ये जीव की भ्रांति है, जीव की ये भ्रांति है। इसलिए आचार्य श्री ने ऐसी भावना भाई है कि जगत के सभी जीव जगत अनुभव करो, मैंने जगत के सभी जीव, जगत में कोई जीव बाकी नहीं रखा, भव्य अभव्य कोई बाकी नहीं रखा, ये स्वभाव सबका मोह का नाश हो जाओ, और मोह का नाश होने से दुख का भी नाश हो जाएगा और सब सुखी हो जाए, ऐसी भावना प्रकट की है। क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूप अज्ञान जहां तक रहता है वहां तक यह अनुभव नहीं होता, यथार्थ अनुभव नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं शास्त्र से शुद्ध ज्ञान से कि आत्मा ऐसा है वैसा है, लेकिन जब तक मिथ्यात्व अवस्था है अज्ञान अवस्था है वहां तक ये यथार्थ अनुभव नहीं होता, ये विकल्प का अनुभव होता है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये विकल्प का अनुभव है। क्यों? कि विभ्रांत दशा है, मोह है, मोह का सर्वप्रथम उपशम होना आवश्यक है। उपशम सम्यक्त्व के काल में जो स्वानुभव होता है उस स्वानुभूति के काल में ही यथार्थ अनुभव होता है, और वहां विकल्प होता ही नहीं, तो विकल्प का अनुभव होने का सवाल भी नहीं रहता। भावार्थ कोई प्रश्न हो तो चर्चा करेंगे, तो प्रश्न का चर्चा का प्रसंग रखते हैं स्वाध्याय में। भावार्थ शुद्धने का विषय रूप आत्मा का अनुभव करें ऐसा आचार्य श्री का उपदेश है। इस कलश में भावना भी है अपनी, और उपदेश भी है जगत के जीवों को कि आप ऐसा अनुभव करो, अपना अनुभव करो। अब यही अर्थ का कलश्रुप काव्य फिर से कहते हैं, ये 11वां कलश है, 11वां कलश पूरा हुआ, 11 बार 13 कलश है। नहीं विदधते बद्धस्पृष्ट भावोदयो में स्फुटम उपरी तरंतो अपि एव प्रतिष्ठां अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगत अवगत मोहि भूय सम्यक स्वभावम्। अब कहते हैं 12वां कलश में फिर से ये बात करते हैं इसमें कि ऐसा अनुभव करने से आत्मदेव प्रकट प्रतिभासमान होता है। ऐसा अनुभव में आत्मदेव, देव शब्द लिया है क्योंकि दिव्य शक्ति का धारण करने वाला है ना, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वत, देव है खुद, शाश्वत देव है वो, स्वयं प्रकट होता है। श्लोकार्थ, यदि कोई सुबुद्धि, कैसा जीव लिया है, सुबुद्धि जीव, जिसको बुद्धिमति अच्छी है, अच्छी कैसे कहेगी, कि जो आत्मकल्याण का वांछक है, जो आत्मकल्याण का चाहक है, दूसरी कोई चाहत नहीं है, इसको कहते हैं सुबुद्धि या सम्यक दृष्टि। भूत वर्तमान और भावी ऐसे तीनों कालों, तीनों काल के कर्म का बंध को अपने आत्मा से शीघ्र तत्काल भिन्न करके तथा उस कर्म के उदय के निमित्त से हुआ जो मिथ्यात्व और अज्ञान, उसको अपना पुरुषार्थ से रोक करके या नाश करके अंतरंग में अभ्यास करते हैं, देखते हैं, तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य, जिसका प्रकट महिमा है, ऐसा व्यक्त, व्यक्त माने अनुभव गोचर, निश्चल, शाश्वत, नित्य कर्म कल, कर्म कलंक कर्दम से रहित, ऐसा स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान है, ऐसा दिखता है, तो ऐसा उनको दिखता है। क्या कहते हैं कि जब कोई सम्यक दृष्टि होता है, सुबुद्धि अनुभव करता है, तो क्या करता है कि तीनों काल के कर्म का बंध को आत्मा से भिन्न अनुभव करता है। भूतकाल में जो बंधे हुए हैं, वर्तमान में जो बंध रहे हैं, और जितना काल मोक्ष जाने में बाकी है उसमें थोड़ा बहुत बंधेगा, उन तीनों से अपने आत्मा को भिन्न देखेगा, भिन्न अनुभव करेगा उसका, कि मेरे शुद्ध स्वरूप में उसका कोई जगह नहीं है, कोई अवकाश नहीं है, वो सर्वथा मेरे से भिन्न ही है। मुझे जो मेरा स्वरूप का, मेरे स्वभाव का अनुभव, ये तो बहुत दूर है मेरे से, अत्यंत भाव है ना, इसलिए बहुत दूर है मेरे से, ऐसा अपनत्व स्वभाव में अनुभव के काल में होता है। देखो एक दूसरा दृष्टांत लेते हैं, अपनत्व कैसी चीज है, कि संसार में हम लोगों को हमारे जो संपत्ति है उसमें हमारा अपनत्व है, समत्व आधार बुद्धि के साथ, सुख बुद्धि के साथ। जब हमें पता चलता है कि हमारी पूरी संपत्ति डूब जाएगी, ऐसा कोई पता चलता है, अभी डूबी नहीं है, डूब जाएगी निकट भविष्य में, ऐसा पता ही चलता है, डूबेगी तब की तो बात दूसरी है, क्या हालत होती है देखो। संपूर्ण रूप से द्रव्य क्षेत्र से, काल से, भाव से अत्यंत भिन्न होने पर भी भ्रांति से, केवल भ्रांति से अपनत्व का, एकत्व का अनुभव, चित्त को कितना अव्यवस्थित, परिणाम को कितना बिगाड़ता है, टेंशन में आ जाता है। क्या होता है?
टेंशन,
एकदम टेंशन में आ जाता है। जैसे मैं पूरा मर गया, रिमेम्बर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं किसके आधार से जीऊंगा, ये बात हो जाती है। ये अपनत्व क्या चीज है, अनुभव से तो मालूम पड़ता है, ये अनुभव से तो मालूम पड़ता है, और ये बिल्कुल उल्टा अनुभव है कि जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभेद अभिन्नपणा त्रिकाल है, ऐसा अपना स्वरूप, उसमें अभेद भाव से पर्याय का भी भेद नहीं, अनुभव के पर्याय का भी जहाँ भेद नहीं है, ऐसा अभेद भाव से अनुभव होता है, तो कितना अपनत्व होता होगा, कितना अपनत्व होता होगा, कि उतना होता है कि तीनों काल का कर्म का संबंध दिखता नहीं है, तीनों काल का कर्म का संबंध अनुभवी पुरुष को नहीं दिखता, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा कहते हैं। भिन्न करके और कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला मिथ्यात्व और अज्ञान को पुरुषार्थ से हटा करके उसको हटा देता है, उस काल में नाश कर देता है, और अंतरंग में देखता है तो स्वभावी अंत तत्व स्वरूप है, इसलिए अंतर्मुख होकर के अंतरंग में देखता है तो यह आत्मा मैंने प्रकट प्रत्यक्ष ऐसा आत्मा, यह मैंने प्रत्यक्ष ऐसा आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य है, ऐसा जिसका महिमा है, इसका महिमा कैसा है, अनुभव से ही पता चलता है कि कितना महिमावंत है, सुना है, समझ में आया है कि हमारा स्वरूप अनंत महिमावंत है। बौद्धिक स्तर पे हम सम्मत भी कर लेते हैं, फिर भी ये महिमा, ये समझ सही होने पर भी यथार्थ नहीं है, जब तक अनुभव नहीं होता तब तक। क्यों? कि आत्मा अनंत महिमावंत है, अक्सर ऐसा ही है, फिर भी वो महिमा अनुभव से ही जाने जाती है, बिना अनुभव जाने जाती देव क्या है ना, इधर 14 लोक ब्रह्मांड का, 14 लोक का मैं नाथ हूं, ये अनुभव पता चलता है, फिर इसको दीनता नहीं आएगी, कभी दीनता नहीं आएगी, ज्ञानी को कभी दीनता नहीं आती, देखा अंदर में ऐसी चीज देखी, इतनी महिमावंत है, इतनी महिमावंत है। एक स्टेज की बात करते हैं, पदार्थ निर्णय भाव भाषण, जैसा है वैसा भाष्यमान हुआ, 144 गाथा में लिया है, प्रथम तो सुत ज्ञान द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना है, ये बीज ज्ञान है, ये संकेत सम्यक्त्व का कारणभूत ज्ञान है, वो भाव भाषण आते ही उसकी महिमा का भाषण होता है, तो फिर वो महिमा परिणाम में समाती नहीं, फाटम फाट आती है, तब तो अनुभव हो जाता है। इसलिए उसको कारण बताया है। ऐसे तो द्रव्य सूत्र दिया है, तो द्रव्य सूत्र लेने में आशय एक है कि द्रव्य सूत्र ज्ञानी की वाणी को भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ज्ञानी की वाणी को द्रव्य सूत्र बोला जाता है। अज्ञानी की वाणी वही शब्द है तो भी द्रव्य सूत्र नहीं बोला जाता है। द्रव्य सूत्र का संबंध भाव सूत्र के साथ है। क्यों? क्योंकि द्रव्य सूत्र का संबंध भाव सूत्र के साथ है। जिसको भाव सूत्र प्रकट है इसकी वाणी को द्रव्य सूत्र बोला जाता है, और वही वाणी में दूसरे जीव को स्वरूप निश्चय होने का, बीज ज्ञान होने का निमित्तत्व होता है। अज्ञानी की वाणी में वो निमित्तत्व कतई नहीं होता, कभी नहीं होता। इसलिए वो बात की स्थापना करने के हेतु से आचार्य श्री ने वहाँ सत्ज्ञान द्वारा ऐसा किया है। सत्ज्ञान द्रव्य स्रोत है, ज्ञानी की वाणी की बात है कि किसी को भी बीज ज्ञान की प्राप्ति यानी स्वरूप निश्चय ज्ञानी की वाणी बिना हो सकता। वही शब्द अज्ञानी का हो उससे नहीं होता, क्योंकि कई लोग सीख लेते हैं कि गुरुदेव ऐसे बोलते थे, हम भी ऐसे बोले, यही स्टाइल से बोले, ऐसे ही शब्द बोले, लेकिन इसमें वो रस नहीं, वो परिणमन में रस नहीं, और ये वचन है, वो कथन है, वो इस रस से प्रभावित हुए नहीं। कैसे? उस रस से, आत्मरस से, चैतन्य रस से प्रभावित नहीं हुए, इसलिए इसमें वो झलक नहीं है। जो झलक होनी चाहिए वो झलक नहीं है, तो निमित्तत्व भी नहीं है। अनंत काल में एक भी ऐसा अपवाद रूप केस नहीं है कि किसी को अज्ञानी की वाणी से ज्ञान हुआ, ऐसा कभी एक भी केस। वो सिद्धांतिक बात रखी है, जो तुम्हारी सिखा था। उसमें ज्ञान ऐसा होता है जो संस्कारी जीव है, जो संस्कारी जीव है, पहले जिसने द्रव्य सूत्र से कुछ संस्कार लिया हुआ है, उनको ऐसा होता है कि द्रव्य लिंगी बोलता है, बात तो वैसे ही बोलता है, लेकिन इसके अनुभव में तो वो चीज है ही नहीं, ऐसा ज्ञान भी उसको हो जाता है साथ साथ। हाँ हाँ हाँ, उनको हाँ ये मिथ्या दृष्टि है, ये
वाणी से हो गया
नहीं, इसकी वाणी से नहीं हुआ, इसकी वाणी में दम नहीं, ऐसा हुआ है। इसकी वाणी में दम नहीं है, ऐसा हो जाता है। हाँ, इसलिए यहाँ ये संस्कार जागृत हो गया है। जागृत होते उसको पता चल गया कि बोलता है वैसा, ये कौवा कोयल जैसा बोलता है, लेकिन कौवा कौवा है, कोयल नहीं है, ऐसी बात है। उसको फर्क दिखता है, इस वक्त उसको फर्क दिखता है, फर्क मालूम पड़ता है, उसको बोला है कि ज्ञान हो गया, वो फर्क का ज्ञान हुआ, उसको बोला कि ज्ञान हो गया, ऐसी बात है। एक भी केस ऐसा नहीं है। क्यों? कि जो कुएं में नहीं है अवाड़े में आएगा कहाँ से? अंदर है ही नहीं, जो खुद ही अंधा है वो क्या दिखाएगा? ये तो सूक्ष्म अंतर्मुख होने का रास्ता है, तो खुद ही इस विषय में अनजान है, वो कैसे बता सकता है? सीधी साधी समझ में आए ऐसी बात है, नहीं समझ में आए ऐसी बात है। आप भावनगर आए नहीं, आप भावनगर में रास्ता कैसे बताओगे किसी? मुंबई गए नहीं, मुंबई में रास्ता कैसे बताओगे? इधर जाओ उधर जाओ, सवाल ही नहीं पैदा। कहते हैं कि जो देखे तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जैसा जिसका प्रकट महिमा है, इसके सिवा नहीं। भावभाषण में भी अनुभवांश है, क्या है? भावभाषण में भी अनुभवांश है। इसलिए इसकी प्रकट महिमा, ऐसा व्यक्त, व्यक्त माने अनुभव गोचर होता है अंतरंग अंतर्मुख होने से, तो निश्चल ध्रुव रूप से शाश्वत तीनों काल वैसा का वैसा नित्य कर्म कलंक करदम से रहित, कर्म का कलंक किचड़, करदम मैंने किचड़, कादव आपने गुजराती मान लिया, संस्कृत मैंने साहित्य में भाषा मान करदम के, करदम के किचड़ कादव, कर्म कलंक से किचड़ से रहित ऐसा स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान है, स्वयं स्तुति करने योग्य है, अपनी स्तुति करना का नहीं करना, करने योग्य है नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, स्तुति करने योग्य है। हम मंदिर जी में जाते हैं, भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, देव विराजमान है इसलिए चढ़ाते हैं, वहां देव विराजमान है मंदिर जी में चढ़ाते हैं, इस मंदिर जी में भी एक देव विराजमान है, ये मंदिर जी में भी एक देव विराजमान है, सर्वोत्कृष्ट है, वो तो सर्वोत्कृष्ट है, प्राथमिकता तो इसकी है, प्रधानता तो इसकी है, वो वितरकता करता है, वो उसमें तो विकल्प उठता है, प्रसन्न उठता में तो सुबह उठेगा साथ साथ। तो कहते हैं कि ये किसी देव को भी अर्घ चढ़ाओ, स्तुति करने योग्य है, स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान, अंतर्मुख होकर के दूसरे की अपेक्षा क्यों अजीत भाई, दूसरे की अर्घ चढ़वाने की अपने को अपेक्षा क्यों है, और ऐसी दीनता भी क्यों है, ये तो भी दीनता क्यों, दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है हमें क्या प्रयोजन, हमें कोई प्रयोजन है क्या दूसरा से, है क्या, ये तो हमारे लिए निष्प्रयोजन बात है, कोई चढ़ाए तो भी निष्प्रयोजन है, नहीं चढ़ाए या गाली दे तो भी निष्प्रयोजन है, हमें क्या लेना देना है, ये तो कर्म का उदय है, अगर कोई अर्घ चढ़ाता है तो भी कर्म का उदय है, गाली देता है तो भी कर्म का उदय है, और हमारा तो आत्मा नित्य कर्म कलंक रहित है या तो बहुत दूर है इससे, हम तो इससे बहुत दूर है, हमारा कोई संबंध कोई वास्ता इन बातों से है ही नहीं। ऐसे एक बात कही है बारहवां कलश में, उसका भावार्थ है कि शुद्ध नहीं की दृष्टि से, दृष्टि मैंने दृष्टिकोण से देखने में आए तो सर्व कर्म से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजी रहा है, विराजमान रहा है, शुद्ध नहीं से देखने में आए तो अपने आत्मा शुद्ध चैतन्य रहित द्रव कर्म भाव कर्म नव कर्म रहित देव स्वरूप दिव्य गुण का धारक दिदीप्यमान देव, कैसा दिदीप्यमान देव चैतन्य चमत्कार अंतरंग में स्वयं विराज रहा है, यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसको बाहर ढूंढता है, यही बड़ा ज्ञान, है अंतरंग में और ढूंढता है बाहर, तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है, क्योंकि दृष्टि बाहर है तो बाहर ही ढूंढेगा, बाहर तो कहीं अपना स्वरूप है ही नहीं। अब शुद्धन के विषयभूत आत्मा की जो अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति है, ऐसे आगे की गाथा की सूचना के रूप में यह 13वां कलश कहा जाता है। जो 15 गाथा में सूत्रकार आचार्य कुंदकुंज आचार्य देव जो बात का प्रतिपादन करना चाहते हैं उसका उपोद्घात करते हैं पूर्व श्लोक में, कि ये जो आत्मा की अनुभूति है वो वास्तव में तो ज्ञान की अनुभूति है। क्यों? कि अनुभव करना वो ज्ञान का स्वभाव है, और ज्ञान के पर्याय में ही ज्ञान का अनुभव होता है, ये अनुभव की मर्यादा है। इससे आगे कहीं भी आत्मा का अनुभव नहीं या ज्ञान का अनुभव है ही नहीं, ज्ञान के सिवा भी ज्ञान का अनुभव नहीं और आत्मा का भी अनुभव नहीं। ज्ञानानुभव वही आत्मानुभव है, ऐसा इस कलश में कहना चाहते हैं, क्योंकि जो आत्मा अनुभव स्वरूप बताया गया है, जो आत्मा सम्यक स्वभाव स्वरूप कहा गया है, वो आत्मा सामर्थ्य रूप है, उसमें वेदन नहीं है, सामर्थ्य में वेदन नहीं है, वो तो शक्ति रूप तत्व है। वेदन व्यक्ति तो वास्तव में आत्मा का अनुभव चीज क्या है? तो कहते को ज्ञान का, ज्ञान को अनुभव वही आत्मा का अनुभव बोला जाता है। तो ये भी एक तर्क हो सकता है कि जब आत्मा का अनुभव नहीं है, ज्ञान का अनुभव है, तो फिर आत्मा का अनुभव कहने की आवश्यकता क्या है? ज्ञान का अनुभव कहो, फिर कोई माथापच्चीसी तो होगा ही नहीं। तो कहते हैं कि उस ज्ञान में जब अनुभव होता है तब लक्ष्य आत्मा पर होता है, स्वभाव पर होता है, और वो लक्ष्य में ऐसा भाव है कि मैं ऐसा हूं। क्या? मैं ऐसा हूं, जो सामर्थ्य रूप तत्व है, मैं ऐसा हूं, ऐसा भाव ना है। वो भाव दर्शाने और लक्ष्य दर्शाने के लिए कहा जाता है कि आत्मा का अनुभव है, वास्तव में आत्मा का अनुभव है ही नहीं, ऐसी बात है। वो बात आचार्य श्री कलश में कहते हैं। एक बात तो वो कही है, दूसरी बात वो कही है कि ये जो अनुभूति है, स्वानुभूति है, आत्मा की अनुभूति कही जाती है, वो शुद्धने के विषयभूत आत्मा की अनुभूति है। किसके? शुद्धने के विषयभूत। इसीलिए शुद्धने द्वारा ये स्वानुभव प्रकट हुआ। तो एक विद्वत जगत में एक और भी तकरार का मुद्दा है कि नए अनुभव करता है कि प्रमाण अनुभव करता है कि नहीं, आप तो जानते हैं, ये भी चलता है झगड़ा। प्रमाण के पक्ष वाले खींचेंगे कि नहीं, अनुभव तो प्रमाण में होता है। क्यों? कि जब अनुभव होता है तो युक्त अनुभव होता है द्रव्य पर्याय का, द्रव्य का लक्ष्य और पर्याय का भेद हो गया प्रमाण, और द्रव्य पर्याय का भेद अनुभव में रहता नहीं, इसलिए अनुभव प्रमाण में होता है। तो वो बात कहते हैं उतने तो सही है, लेकिन वो अनुभव शुद्ध नयात्मक है, ये भी यहाँ शुद्ध नय का विषय होने से स्थापित होता है। वो बात आचार्य से यहाँ कही है, क्योंकि अनुभव एक अवस्था है, विधेयक अवस्था है। विधेयक माने क्या? कंस्ट्रक्टिव कार्य है, वो डिस्ट्रक्टिव कार्य नहीं है। क्या? कुछ कार्य डिस्ट्रक्टिव होता है, कुछ कंस्ट्रक्टिव होता है। यहाँ एक विधेय पॉजिटिव बात पैदा होती है कि स्वरूप रचना होती है, क्या होता है, स्वयं के पुरुषार्थ से फिर उनका वही काम है स्वरूप रचना को करना, वहाँ ये काम होता है। तो ये काम होता है तो काम कार्य कुछ होता है तो कार्य करने की कोई पद्धति होती है तो कार्य होता है, और कोई भी टेक्निकल काम होता है कलात्मक काम होता है इसकी तो खास पद्धति होती ही है, वो ऐसे जैसे तैसे नहीं होता। टेक्निकल जो काम है वो अपनी टेक्निक से ही होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये तो विश्व की सूक्ष्म में सूक्ष्म और बड़ी में बड़ी टेक्निक है, अनुभव कैसे करना ये कला तो बहुत बड़ी टेक्निक है। तो इसकी विधि दर्शाने के लिए ये बात रखी गई है, शुद्ध नया आत्मा का, क्या कहते हैं उसको, शुद्ध नया आत्मा का, स्वानुभूति को शुद्ध नया आत्मा का कहिए। देखो क्या कलश में कहते हैं कि आत्मानुभूति इति शुद्ध नया आत्मा का, या जो आत्मानुभूति होती है तो शुद्ध नया आत्मा का होती है, या ज्ञानानुभूति, या इसको ज्ञानानुभूति कहो, या ज्ञानानुभूति यमेव किलेति बुद्ध्वा, वास्तव में खरे खर तो ज्ञानानुभूति है ऐसा जान करके आत्मानम आत्मनि निवेश्य, निवेश्य मैंने प्रवेश्य, आत्मा से आत्मा में प्रवेश करके सुनिष्प्रकम्पम स्थिर होकर के, निष्प्रकम्पम एकोस्ति नित्यम, मैं एक नित्य अवबोध घन ज्ञान का घन स्वरूप, जिसमें बेहद ज्ञान भरा हुआ है, ऐसा घनिष्ठ ज्ञान का स्वरूप, समन्तात चारों ओर में ज्ञान का घन स्वरूप, जैसे लवण में एक एक परमाणु में खारापन भरा है, ऐसे मेरे स्वरूप के एक एक प्रदेश में, मैंने सर्व से छोटी जगह में बेहद ज्ञान भरा है, बेहद स्वभाव। इस प्रकार से जो पूर्व कथित शुद्ध नय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, क्या, या शुद्ध नय आत्मा का आत्मानुभूति, जो आत्मानुभूति की हमने चर्चा आगे की, यह पूर्व कथित शुद्ध नय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। कैसी है, शुद्ध नय स्वरूप, यही घर वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। क्यों, अनुभव का करना, अनुभव का होना, वेदन का होना, ज्ञान का स्वसंवेदन के अलावा और कहीं है ही नहीं। स्वानुभव के काल में जो स्वसंवेदन होता है यही ज्ञानानुभूति है। ज्ञानानुभूति माने ज्ञान ज्ञान स्वयं का अनुभव करे, ज्ञान अपना अनुभव करे, ज्ञान ज्ञान का अनुभव, इसी को कहते हैं स्वसंवेदन। और ऐसा ही स्वरूप है, स्वभाव है, ज्ञान अपना ही वेदन करे, स्वसंवेदन करे। आगे आचार्य श्री ने परिशिष्ट में 47 शक्ति में 12वीं शक्ति का यही स्वरूप लिया है, विशद स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। ये प्रकाश शक्ति की डेफिनेशन परिभाषा कही है, कैसी है, विशद मैंने स्पष्ट, धुंधलापन नहीं है, अनुमान करने की कोई बात नहीं, स्पष्ट, क्योंकि प्रत्यक्ष है, ज्ञान ज्ञान को वेदा है, वेदता है, उसमें कोई परोक्षता नहीं है। ये भी विद्वत जगत में झगड़े की बात हो गई है कि ये तो मति श्रुत में अनुभव होता है और मति श्रुत परोक्ष बोला है उमा स्वामी जी ने, बहुत आर्ग्यूमेंट आती है, मति श्रुत है वो बात सही है, लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ऐसा जो ज्ञान का नाम है वो आगम विवेक्षा में जाता है। कैसे, आगम विवेक्षा किसको कहते हैं, कि कर्म के संबंध वाली दशा को, परमाणु के साथ संबंध वाली दशा को आगम की बात कही है इस दृष्टि से। तो तो मति ज्ञानावरण का क्षोभम, शुद्ध ज्ञानावरणीय का क्षोभम, जिस ज्ञान को है उसको मति शुद्ध ज्ञान कहने में आया। लेकिन यहाँ कर्म का संबंध रहित स्वानुभव की बात चलती है। किसकी बात चलती है? कर्म का संबंध जिसने छोड़ दिया है, नहीं रखा, अंतर्मुख होने में निमित्त नैमित्तिक संबंध छूट गया, अंतर्मुख हो गया, उपयोग अंतर्मुख होगा, तो उसने अनुभव क्या करे? मेरा ज्ञान तो मुझे ही अनुभव कर रहा है, मुझे तो मेरा ज्ञान तत्व ही गम्य हो रहा है। आता है सोगाने जी के पत्र में कि गुरुदेव कहते हैं कि मुझे तो मेरा ज्ञान तत्व ही गम्य होता है, गम्य मैंने अनुभव गम्य होता है, तो अंतर्मुख होते ही पता चल जाता है कि ये तो स्वसंवेदन ज्ञान में हो ही रहा है, करना वो भी सवाल नहीं है, सहज हो रहा है। 17-18 में कहेगी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को निरंतर नित्य अनुभव में आ ही रहा है, मालूम नहीं पड़ता वो बात दूसरी है, मालूम पड़ता है वो बात दूसरी है, लेकिन हो रहा है वो बात तो है ही। तो अंतर्मुख होता है उसको पता चलता है कि ये हो रहा है, और उसे को ही ज्ञानानुभूति कहते हैं। उसी काल में लक्ष्य स्वरूप पर होने से, लक्ष्य स्वभाव पर होने से उसको आत्मानुभव भी कहा जाता है, लेकिन वो उपचार है। क्या है? उपचार है। क्यों? किल शब्द यहाँ लिखा है, ज्ञानानुभूति यमेव किलेति बुद्ध्वा, किल शब्द वास्तव में खरेखर तो ये ज्ञानानुभूति है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान का अनुभव करता है, और आत्मा जो स्वभाव रूप है उसका अनुभव होने का कहाँ सवाल है, तो शक्ति रूप तत्व है, उसका क्या अनुभव हो सकता है, उसमें तो अनुभव होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई योग्यता ही नहीं है, इसका कोई वो कैरेक्टर नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है अनुभव करने का, कहाँ से करेगा। लेकिन अपनत्व उसमें है, और प्रगाढ़ अपनत्व है। कैसा है? प्रगाढ़ अपनत्व है, इसलिए वो प्रगाढ़ता दिखाने के लिए कुछ भेद अनुभव करने वाली पर्याय को नहीं रहता, ऐसा प्रगाढ़ है वो दिखाने के लिए, और लक्ष्य दिखाने के लिए कहते हैं कि आत्मा का अनुभव हुआ, लेकिन वो उपचार है, वास्तव में तो ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव होता है। यही खरेखर ज्ञान की अनुभूति है, ऐसा जान करके, और ऐसा जानने से आत्मा में आत्मा को निश्चल थाप करके, ऐसा नहीं जाने तो आत्मा को आत्मा में स्थापित कर सकता। ज्ञानानुभूति से होती है, विधि यहाँ से चालू होती है, ये तो 15वीं गाथा का विषय है, इसलिए यहाँ से ये बात को उठाई है, कलश में उठा ली, सूचना कर दी कि देखो बात तो यही चलेगी कि विशेष ज्ञान का तिरोभाव करके, मैंने विशेष ज्ञान में अनेक निराकार है इसका तिरोभाव करके आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके सदा सर्वतरफ मैंने सभी और एक मैंने अभेद ज्ञान घन आत्मा ही है ऐसा देखना, फिर आत्मा के सिवा कुछ दिखाई देगा नहीं। जैसे वो 15वीं गाथा में वो लवण का दृष्टांत लिया है, और आगे भी उसका कलश भी यही कहेंगे दृष्टांत में, कि जैसे लवण की एक डली है, उसके परमाणु परमाणु में पूरी खारास भरी है, खारापन भरा है, वैसे आत्मा में, पूरी आत्मा में यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्वदेह प्रमाण इसकी स्थिति है, क्षेत्र की चारों ओर मैंने पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में इसलिए कहते हैं कि इस पर संवेदन का विषय ऐसा है कि पूरे क्षेत्र में अनुभव गोचर होता है, वेदांतियों को यहाँ अनुभव होता है, और जो कृत्रिम ध्यान सीखते हैं वो यहाँ से चक्कर चलाते हैं, तो सातवां चक्कर इधर आता है, चक्कर में पढ़ते हैं, एक चक्कर दूसरा चक्कर 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 करके इधर चक्कर में आते हैं और बोलता है कि हमको वचनातीत अनुभूति हो गई, ये अनुभव नहीं है। आचार्य श्री कहते हैं कि समन्ता तवोद घनास्ति, चारों ओर पूरे क्षेत्र में भीतर में भी। क्यों? जैसे हमारा ये शरीर है उसमें स्पर्शेंद्रिय पूरे शरीर में है, कहीं भी स्पर्श होता है पता चल जाता है, एक चींटी भी पीछे चलेगी जहाँ हाथ नहीं पहुँचता पता चल जाएगा कि कोई छोटा सा जीव चलता है वहाँ। क्यों? स्पर्श इंद्रिय है। लेकिन ये ऊपर के प्रदेश में है। किधर है? ऊपर के प्रदेश में है। इंजेक्शन जब लगता है, टच होता है, तब मालूम पड़ता है। फिर वो इंजेक्शन की सुई आधा इंच गई, एक इंच गई, पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलता है। क्योंकि भीतर में स्पर्श इंद्रिय नहीं, वेदन ऊपर ही आता है, स्पर्श का वेदन ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान है। इसका क्षोभ कुछ प्रदेश में ही होता है, पूरे प्रदेश में क्षोभ नहीं होता। जबकि ये क्षोभ ज्ञान नहीं है, इस अनुभव है वो क्षोभ ज्ञान नहीं है, क्योंकि तो आगम की विवेक्षा हो गई क्षोभ वाले, कर्म के साथ संबंध रखने वाले। ये तो कर्म का संबंध छोड़ करके अंतर्मुख हो गया, पूरे प्रदेश में अनुभव आएगा। सिर्फ ऊपर ऊपर अनुभव आएगा ऐसा नहीं, पूरे प्रदेश में अनुभव आएगा, ऐसा कहते हैं। रोमांच भी ऊपर ऊपर होता है, तो रोमांच रोंगटे होते हैं वहीं होता है, ये तो पूरा घन एक एक प्रदेश। जैसे हमारा जितना भी शरीर है कहीं भी वैक्यूम नहीं है, पूरा आत्मा का प्रदेश घनिष्ठ रूप है, एक पिंड आत्मा है। तो अनुभव जो है वो पूरे आत्मा में होता है, ऐसा अनुभव होता है। दृष्टांत एक पॉइंट से ले सकते हैं, जैसे आपको बिजली का करंट लगता है, उंगली से लग गया, कैसे कि हम स्विच ऑन ऑफ करने गए वहाँ करंट लीकेज हो रहा था, तो स्विच को स्पर्श करते ही करंट आ गया, छुआ इधर और करंट पास हुआ, पूरी बॉडी में हुआ कि नहीं हुआ, पूरी झंझनाहट आई कि नहीं आई, पूरे शरीर में जिसको लगा होगा उसको मालूम होगा कि पूरी झंझनाहट पूरी बॉडी में आएगी। वो एक दृष्टांत के रूप में है। ये जो स्वानुभव है पूरे प्रदेश में, अवबोध घन समन्तात ऐसा लिया है शब्द, पूरे प्रदेश में चारों ओर एक ज्ञान घन आत्मा ही अनुभव गोचर होता है। प्रदेश प्रदेश से आत्मरूपता, चैतन्यता, संवेदन, आनंद आदि अनंत गुण प्रदेश प्रदेश में ये ज्ञान के दीपक प्रकाशमान हो जाते हैं, ज्ञान के दिए जल जाते हैं, पूरा आत्मा ज्ञान ज्योति अनुभव गोचर मालूम पड़ता है निर्विकल्प दशा के काल में। भावार्थ ऐसा है कि पहले सम्यक दर्शन को प्रधान करके 14वीं गाथा में कहा था, और 15वीं गाथा में ज्ञान को मुख्य करके कहेंगे, यानी ज्ञान के मुद्दे से इस स्वसंवेदन की स्वानुभूति की विधि की बात चलेगी कि यह शुद्ध नहीं के विशेष स्वरूप जो आत्मा की अनुभूति है वही सम्यक ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है, ऐसा आगे की गाथा में कहेंगे। यहाँ तक रखेंगे।